ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం జ్ఞానమినందస్య జ్ఞానంజనాశలక్య చాక్షురమిళితం శ్రీచైతన్య మనోవ్యస్త స్థాపితాం భూతలే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత హరే కృష్ణ Hare Krishna. I think we have a lot of students from the NIT here. So, jaise aap jante hain, Hare Kadasi ko is kange kai kendra mein prapali lamita pada jata hai. Bhav ye hai, it's too loud. Bhav ye hai ki hum sab ko శ్రీ ప్రభుపాద జీ యోగి భగవాన్ కే శుద్ధ భక్త హే ఉన్నే విషయ మే జ్ఞాన ప్రాప్త హోనా చాయే. ప్రభుపాద జీ సంస్థా కే సంస్థాపక ఆచార్య హే ఔర్ ఉన్నోనే బడీ గహరీ తపస్యా ఉఠాకర్ ఇస్ సంస్థా కీ స్థాపనా కీ ఔర్ ప్రభుపాద జీ కీ ఇచ్ఛా థీ కే సంస్థా विश्व के उद्धार के कार्य के लिए कार्य करें. तो प्रभुपाद जी जैसे आप जानते हो बड़े भारत में विदेश जाने से पहले बड़ा अधिक प्रयास करना पड़ा. आपके बॉम्बे में प्रभुपाद जी निकट के स्थान में ही रहते थे. यहां इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही है श्रीमती मुनार जी का घर. और श्रीमती मुनार जी वो भक्त थी जिन्होंने प्रभुपाद जी को सुविधा दिया था अमेरिका जाने के लिए. प्रभुपाद जी अंधेरी में सिंधिया नेविगेशन कंपनी के क्वार्टर्स थे, वहां निवास कर रहे थे. और प्रभुपाद जी पैदल आते थे अंधेरी से यहां था. और उन्होंने एक समय ये स्थान देखा जो कि उस समय बिल्कुल जंगल था. और प्रभुपाद जी ने ये प्रार्थना की थी भगवान से कि अगर भगवान ये स्थान उन्हें देंगे तो उनके लिए वो बड़ा सुंदर मंदिर बनाएंगे. और उस समय प्रभुपाद जी के पास मुश्किल से कोई 200-300 रुपए थे बस. और प्रभुपाद जी खुद श्रीमती मुनार जी के घर जाते थे बकायदा इस विनती के साथ कि वो उन्हें सुविधा दे अमेरिका जाने के लिए. और क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे प्रभुपाद, भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की. और प्रभुपाद जी बकायदा अंधेरी स्टेशन जाते थे लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए. तो इस समय जो अब लीला मृतम में पढ़ रहे हो आप, वो कथा पढ़ रहे हो जबकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना कर ली है 1966 सितंबर. तो प्रभुपाद जी ने एक साल पहले इस्कॉन की स्थापना की थी. भारत में तो प्रभुपाद जी को संघर्ष करना ही पड़ा, पर विदेशों में जाकर भी संघर्ष करना पड़ा. एक समय प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में एक हिप्पी के लॉफ्ट में निवास कर रहे थे क्योंकि प्रभुपाद जी के पास ना अधिक धन था ना जान पहचान. तो कभी किसी के स्थान में रहते थे, कभी किसी और के स्थान में. तो ये जो हिप्पी था इसके पास एक लॉफ्ट था, लॉफ्ट है एक छोटे गोडाउन जैसे जिसमें प्रभुपाद जी रह रहे थे। और एक दिन ये व्यक्ति बड़े नशे में आया रात को 1 बजे और प्रभुपाद जी को मारने को। तो प्रभुपाद जी को रात के 1 बजे अपनी सारी पैकिंग करनी पड़ी और वो न्यूयॉर्क की सड़क में आ गए थे। ये केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं ये बताने के लिए कि प्रभुपाद जी ने कितनी भारी तपस्या उठाई इस संस्था की स्थापना के लिए। तो आप इस समय पढ़ रहे हो कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पहले केंद्र की स्थापना कर दी। कहां था पहला केंद्र? न्यूयॉर्क में। और अगर आप न्यूयॉर्क में अभी जाओ तो वहां एक खास पार्क है टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, जहां की प्रभुपाद जी जाते थे कीर्तन करने के लिए, जहां से प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना का प्रचार शुरू किया। और वहां उस एक बड़े पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी ने बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन किया था, एक बड़ा निशाना है प्लैक, दिस इज द ट्री अंडर विच द फाउंडर ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड हिज मूवमेंट। तो पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में। और शुरू में प्रभुपाद जी के जो भक्त थे लगभग सभी गृहस्थ थे। वो यहां आप पढ़ रहे हो एक विवाह के विषय में, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के केंद्र की स्थापना कर दी है। पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की और पहला दीक्षा का प्रोग्राम भी दिख कर दिया है। और अभी प्रभुपाद जी इस लीला में पहला गृहस्थ की शादी को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो असीम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे।
हरे कृष्ण। विवाह उत्सव में लगभग 30 लोग सम्मिलित हुए। सजावट वैसी ही थी जैसे 3 दिन पहले दीक्षा समारोह के लिए की गई थी, सिवाय इसके कि वह अधिक तड़क भड़क वाली थी और भोज अधिक शानदार और खर्चीला था। स्वामी जी का सामने वाला कमरा अनानास की टहनियों से सजाया गया था और उसके ऊपर एक छोर से दूसरे तक बंधनवार और फूल पत्तियों की झालरें टांगी गई थीं। कुछ नए दीक्षित शिष्य मोटे लाल मनकों की अपनी मालाएं पहने हुए आए। वे प्रतिज्ञा कर चुके थे प्रतिदिन माला की 16 फेरियां, और वे अपनी मालाओं पर वैसे ही जप करते जैसा कि स्वामी जी ने बताया था। प्रसन्नतापूर्वक यद्यपि मस्तिष्क पर जोर देकर वे अपने साथियों को उनके आध्यात्मिक नामों से पुकारते। जानकी। स्वामी जी ने जानकी से कहा, जानकी अपने शब्दों में कह रही, मुझे अपने विवाह के अवसर पर साड़ी पहननी चाहिए और रेशम की होनी चाहिए। मैंने पूछा किस रंग की, तो वे बोले लाल रंग की। अतः मुकुंद ने मेरे लिए एक बड़ी सुंदर साड़ी खरीद डाली और कुछ सुंदर आभूषण भी। स्वामी जी के मित्र जानकी को जानते पहचानते थे क्योंकि वह मुकुंद के साथ नित्य आती थी। आम तौर पर वह श्रृंगार पटार नहीं करती थी और बहुत सादे कपड़े पहनती थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ और थोड़ा संकोच भी जब उन्होंने जानकी को आभूषण पहने सजी धजी और चमकीली लाल साड़ी में प्रवेश करते देखा। तो दुल्हन जानकी के बाल जूड़े के रूप में बांधे गए थे और अंडाकार रूपाले तारकसी के आभूषण से अलंकृत किए गए थे। उसने चांदी के भारी कर्ण फूल पहन रखे थे जिन्हें मुकुंद ने 5th एवेन्यू की एक महंगी भारतीय आभूषण की दुकान से खरीदा था। अपने हाथों में चांदी के कंगन भी पहने थे। प्रभुपाद ने मुकुंद प्रभुपाद ने मुकुंद और जानकी को विवाह मंडप में यज्ञ की वेदी की दूसरी ओर आमने सामने बैठने को कहा, जैसा कि उन्होंने दीक्षा के समय किया था। उन्होंने अगरबत्तियां जलाई और वर वधु को जल से शुद्ध किया, शुद्धि मंत्र पढ़ा और तब बोलना आरंभ किया। उन्होंने समझा कर बताया कि कृष्ण चेतना में पति और पत्नी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे की सेवा कैसे करनी चाहिए और फिर कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए। तब प्रभुपाद ने जानकी को, जानकी की बहन से कहा कि वह जानकी को औपचारिक रूप में मुकुंद की पत्नी के रूप में अर्पित करे। उसके बाद मुकुंद वही कहता गया जो स्वामी जी बोलते थे, मैं जानकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कृष्ण भक्ति में हम दोनों साथ साथ शांति पूर्वक रहेंगे और हमारा एक दूसरे से विच्छेद कभी नहीं होगा। इसके बाद प्रभुपाद जानकी की ओर मुड़े, क्या तुम श्रीमान मुकुंद दास ब्रह्मचारी को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हो, क्या तुम हमेशा उसकी सेवा करोगी और कृष्ण चेतना के कार्यों में उसकी सहायता करोगी।
प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, बहुत कम लोगों के पास कृष्ण का ज्ञान था और वैदिक संस्कृति का ज्ञान। प्रभुपाद जी ने वहां जाकर वैदिक संस्कृति की स्थापना की। तो यहां पढ़ रहे हो किस प्रकार प्रभुपाद जी ने पहले गृहस्थों का विवाह करवाया न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद जी का भाव क्या था, वैदिक समाज की शिक्षा को स्थापित करना। प्रभुपाद जी जब पश्चिम देश में गए, ना ही किसी ने कृष्णा का नाम सुना था, ना ही किसी को भगवद गीता का के विषय में कुछ ज्ञान था, ना ही किसी को वैदिक संस्कृति का अधिक ज्ञान था। प्रभुपाद जी ने शुरू से हर चीज सिखाई भक्तों को, प्रसाद बनाना सिखाया, धोती कुर्ता पहनना सिखाया, औरतों को शिक्षा दिलाई कि साड़ी पहननी चाहिए, शरीर ढकना चाहिए। शुरू से अंत तक प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी। जब प्रभुपाद जी रशिया गए थे 1971 में, तो उस समय प्रभुपाद जी ने अमेरिका में स्थापित कर दिया था केंद्रों की, और यूरोप में भी। ये मुकुंदा जिनके विषय में आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ये बाद में मुकुंदा गोस्वामी बने और ये बहुत बड़े संगीतकार थे प्रभुपाद जी से जुड़ने से पहले। तो प्रभुपाद जी ने अपने तीन गृहस्थ शिष्यों को भेजा था खास आदेश के साथ कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए इंग्लैंड में। भक्ति सिद्धांत जी ने भी अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था इंग्लैंड, क्योंकि उन दिनों में हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था। तो भक्ति सिद्धांत जी की भी इच्छा थी कि इंग्लैंड में वैष्णव पहला वैष्णव केंद्र स्थापित हो। पर वो लौट गए बिना किसी सफलता के। तो प्रभा जी की बड़ी भारी इच्छा थी कि लंदन में इसको का एक प्रसिद्ध केंद्र बने, और प्रभा जी ने अपने तीन गृहस्थ शिष्यों को भेजा, श्याम सुंदर, गुरुदास, और गुरुदास यहां आए थे थोड़ी देर पहले, और मुकुंद। और इन्होंने ऐसा चमत्कार किया, इंग्लैंड में गए, बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया। फिर उन दिनों में बीटल्स का नाम सुना आपने, बीटल्स का बड़ा ऊंचा नाम था समाज में, तो बीटल्स को प्रचार किया। उनमें से एक खास करके जॉर्ज हैरिसन बड़े प्रभावित हुए। जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्ण मंत्र बनाना शुरू कर, हरे कृष्ण का जाप शुरू कर दिया। और फिर इस्कॉन ने, जॉर्ज हैरिसन ने एक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया। आजकल तो रिकॉर्ड्स का जमाना चला गया है, तो एक एक खास रिकॉर्डिंग की थी मुकुंदा जिनके विषय में आप सुन रहे हो। मुकुंदा और यमुना माता जी ने गाया था। यमुना माता जी ने एक साल पहले अपने शरीर को त्यागा, और ये रिकॉर्ड जो था यूरोप के हिट परेड्स के बिल्कुल टॉप में आ गया था, बिल्कुल दो हफ्ते तीन हफ्ते के बाद, और जिसके द्वारा हरे कृष्ण का बहुत प्रचार हुआ, पूरे यूरोप में सब में जिज्ञासा थी कि ये हरे कृष्ण मंत्र के विषय में और कईयों ने हरे कृष्ण का उच्चारण शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी जिस वातावरण में गए थे विदेशों में, किसी के पास कुछ ज्ञान नहीं था वैदिक संस्कृति या कृष्णा के बारे में। उदाहरण के लिए जब प्रभुपाद जी रशिया गए, जैसे मैंने कहा पहले प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कई केंद्रों की स्थापना की, फिर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा, गृहस्थ शिष्यों को यूरोप में कृष्णा भक्ति की स्थापना के लिए। और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए जब लंदन में भी इसका उनका पहला केंद्र खोला बड़ी प्लेस में। और फिर जॉर्ज हैरिसन इतना प्रभावित हो गया था कि उसने भक्तिवंदना मैनर खरीद कर दिया इस्कॉन को। ये जो भक्तिवंदना मैनर है ये पहले इंग्लैंड के रॉयल फैमिली का महल था और उसके साथ 21 एकड़ जमीन है। आज उस स्थान की कीमत होगी करोड़ रुपए। और जॉर्ज हैरिसन ने इसको उनको दान के रूप में दिया था। और जॉर्ज हैरिसन को प्रभावित किया था भक्ति में मुकुंदा वगैरह ने, और फिर वो प्रभुपाद जी से मिला था। और प्रभुपाद जी एक बार इंग्लैंड गए थे तो रिंगो स्टार जो भी बीटल्स का एक था उनके घर में शायद ठहरे हुए थे। तो इस प्रकार प्रचार बढ़ा। तो जब प्रभुपाद जी रशिया गए उनके मन में यह भाव था किसी प्रकार से रशिया में भी किसी को जोड़ा जाए कृष्ण भक्ति के साथ। तो एक दिन प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी श्याम सुंदर बाजार में गए थे दूध लाने के लिए। प्रभुपाद जी होटल में ठहरे थे और प्रभुपाद जी के साथ दो अमेरिकन शिष्य गए थे रशिया। तो श्याम सुंदर उन दिनों में और आज भी रशिया में बहुत मांस खाते हैं, वेजिटेरियन, दूध सब्जी मिलना उस समय तो बहुत कठिन था। मैं भी जब गया था 76 में मैंने देखा बहुत कठिन था। तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी जो है वो ढूंढ रहा था कोई स्थान जहां की दूध और फल मिले, क्योंकि प्रभुपाद जी होटल में थे और होटल में दूध और फल नहीं मिल रहा था। तो दो मित्र थे, एक था एक रशियन लड़का एनाटोले और दूसरा था एक इंडियन व्यक्ति लड़का। जो इंडियन लड़का था जो रशिया में इंडियन एम्बेसी थी मॉस्को में वहां के किसी अधिकारी का बेटा था और साथ में था उनके एक रशियन भक्त। तो इन देशों में उस समय आज तो नहीं लोगों में बड़ी रुचि होती थी डॉलर खरीदने के लिए। उन दिन में डॉलर का ब्लैक मार्केट होता था रशिया हिंदुस्तान में भी 15 साल पहले। तो श्याम सुंदर एक बैंक के सामने से गुजर रहा था तो ये रशियन और इंडियन लड़के ने क्योंकि अमेरिकन था अप्रोच करके बोला यू हैव एनी डॉलर्स फॉर सेल, कुछ डॉलर हैं बेचने के लिए। तो श्याम सुंदर क्योंकि उन दिन में बहुत ही कड़क पुलिस का राज्य था रशिया में, तो श्याम सुंदर ने घबरा कर कहा नो आई डोंट हैव एनी डॉलर्स। तो फिर वो रशियन लड़के ने पूछा डू यू हैव एनी जीन्स टू सेल, जीन्स अमेरिकन जीन्स, क्योंकि उन दिन में अमेरिकन जीन्स का बड़ा ऊंचा ब्लैक मार्केट प्राइस थी रशिया जैसे देश में। तो श्याम सुंदर नो आई डोंट हैव एनी जीन्स, हमें धोती कुर्ता, आई डोंट कैरी जीन्स। फिर उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी बीटल्स रिकॉर्ड, तो उसने कहा आई डोंट हैव एनी बीटल्स रिकॉर्ड बट द बीटल्स गुरु इज हियर। इनमें बड़ी रुचि बीटल्स का गुरु ही इधर है, My guru is a guru of the Beatles. तो उन्होंने कहा Can we meet him? हम उन्हें मिल सकते हैं। श्यामचंद्र का यस यू कैन मीट हिम माय गुरु बीटल्स गुरु इज हियर. तो इस बहाने में श्यामचंद्र ले गया ये दर्शन लड़के को प्रभुपाद जी से मिलने के लिए. और प्रभुपाद जी और ये जो दर्शन लड़का था इसका पहले आकर्षण था योग इत्यादि में. तो प्रभुपाद जी ने उसे समझाया असली योग क्या है, भक्ति योग. फिर प्रभुपाद जी ने उनका परिचय करवाया हरे कृष्ण मंत्र के साथ. फिर प्रभुपाद जी गए थे रशिया 5 दिन के लिए केवल 5 दिन. वो भी बड़ी कठिनाई से वीजा मिला था उन दिनों में. रशिया जैसे देश का वीजा मिलना बहुत बहुत कठिन था. तो 5 दिनों के दौरान प्रभुपाद जी ने पहला रशियन शिष्य बनाया. तो उसे जाप करना शुरू करवा दिया. दूसरे दिन में उसे 16 माला जाप शुरू कर दिया रशियन कहने. फिर तीसरे दिन प्रभुपाद जी ने अपने होटल के कमरे में उसे धोती कुर्ता पहनना सिखाया. फिर उसे तिलक लगाना सिखाया. फिर उसे प्रसाद बनाना सिखाया. और चौथे पांचवें दिन प्रभुपाद जी ने उसको दीक्षा भी दे दी. उसका नाम रखा अनंत शांति. उनसे कहा तुम अभी रशिया में प्रचार शुरू करो. फिर अनंत शांति ने प्रचार शुरू किया और आज उस देश में हजारों हजारों भक्त हैं. लगभग 150 केंद्र हैं. तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया ये बताने के लिए कि जिस वातावरण में श्री प्रभुपाद जी गए थे पश्चिम देश में, किसी के पास कुछ ज्ञान नहीं था वैदिक संस्कृति के विषय में. प्रभुपाद जी ने हर चीज, जैसे आप बच्चे को ABCD सिखाते हो तो प्रभुपाद जी ने ABCD सिखाई सब भक्तों को. इसलिए आप लीलामृत में पढ़ते हो कई बार प्रभुपाद जी ने गृहस्थ की शादी करवाई, कई बार प्रभुपाद जी ने धोती पहनना सिखाया, फिर प्रभुपाद जी ने प्रसाद बनाना सिखाया. प्रभुपाद जी एक दिन रसोई कर रहे थे न्यूयॉर्क में और प्रभुपाद जी ने एक लड्डू तैयार किया दूध चीनी और पानी के साथ. तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा लड्डू बनाया वो तैयार होने के बाद, प्रभुपाद व्हाट डू यू कॉल दिस? गुलाब जामुन रसगुल्ला उन्हें कौन है? पर वो गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं था. तो प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद सर जस्ट कॉल इट सिंपली वंडरफुल. तो हमारे पश्चिम देश में खास करके अमेरिका के मंदिरों में भगवान को जब सुबह भोग लगाते हैं तो इसमें सिंपली वंडरफुल भी बनाते हैं. आप कहोगे व्हाट इज दिस सिंपली वंडरफुल? वो लड्डू जैसे मीठा है उसका स्पेशल फॉर्मूला है. और प्रभुपाद जी ने स्पेशल फॉर्मूला से वो लड्डू तैयार किया था और उसका नाम दिया सिंपली वंडरफुल. तो प्रभुपाद जी ने बड़े कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का भी अनुवाद किया. मुझे याद है हरे कृष्ण लैंड जहां पीछे आप पहले तो आप जैसे आप जानते हो यहां 6 बिल्डिंग्स थी पुरानी. तो एक समय प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था. जब भी कई लोग आए थे उन्हें मिलने के लिए अक्सर 5 से 7 प्रभुपाद जी अतिथियों को दर्शन देते थे. तो डॉक्टर ने कहा था प्रभुपाद जी को आप विश्राम कीजिए. और जब प्रभुपाद जी को पता लगा कि लोग आए हैं मिलने के लिए प्रभुपाद जी तुरंत तैयार हो गए. और यहां हरे कृष्ण लैंड में भी प्रभुपाद जी ने कितना समय दिया इन ग्रंथों के अनुवाद में. तो प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास परिश्रम के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि लोग इन ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन को सुधारें. अगर आज हजारों भक्त जुड़ रहे हैं कृष्णा भक्ति के साथ, उनका मूल कारण क्या है? इन ग्रंथों का प्रभाव. इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, साथ में है महानाचार्यों का तात्पर्य. तो जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इसके द्वारा क्या आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है. और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, दीज आर टाइम बॉम्ब्स, आपको कुछ पता नहीं कब इसका प्रभाव हो. आज आज बांटोगे इसका प्रभाव 6 महीने बाद भी हो सकता है. मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने गीता खरीदी थी 1980 में, 15 साल के लिए उसने गीता 15 साल या 16 साल बाद कोई दुर्घटना हुई तो था, तो दुख की स्थिति में हम भगवान के शरणागत जल्दी होते हैं. जैसे भगवान कहते हैं 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं कि नहीं, एक है रोगी पीड़ित दुखी. तो उसने गीता पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ना शुरू किया, उसके द्वारा अपने जीवन को सुधारना शुरू किया. तो भागवत गीता और वैदिक शास्त्रों का जो वितरण है ये बहुत आवश्यक सेवा है. प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अंतिम दिनों में कहा, as long as book distribution goes on, I will never die. जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा. जब अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना कमजोर था कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, उस स्थिति में भी प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का अनुवाद किया. क्यों? उनके मन में यही भाव था कि जितना सिद्धांत वो छोड़ सकें छोड़ें हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए. तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है जिसमें आप सब जुड़े हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है. ये मैराथन शुरू हुआ था प्रभुपाद जी के जमाने में. जब पहला मैराथन शुरू हुआ था इस काल में वो 2 दिनों का था, सैटरडे संडे. बस अमेरिका में ये रिवाज है कि क्रिसमस से 1 महीने पहले स्टोर्स काफी लेट खुलते हैं, खुले रहते हैं. तो भक्त जो है जाते थे शाम को मॉल्स वगैरह में ग्रंथों का वितरण करने के लिए. फिर ये मैराथन बड़ा 1 हफ्ते के लिए, अब हम इस कॉल में करते हैं 1 महीने के लिए, और इसका नाम है श्रील प्रभुपाद मैराथन. इससे ये सेवा निभाते हैं किसकी खुशी के लिए? प्रभुपाद जी की खुशी के लिए. तो आप सब जो जुड़े हो इस महत्वपूर्ण सेवा में, आप सब पर प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें. और इन ग्रंथों में है भगवान का उपदेश और महान संतों की व्याख्या. जब प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते थे, हमें पश्चिम देशों में जाने से पहले प्रभुपाद जी खुद टाइप करते थे और हाथ से लिखते थे मैं, पर पश्चिम देशों में जाने के बाद भगवान ने उन्हें अच्छे शिष्य भेजे जो कि जिन्होंने ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दिया था और प्रभुपाद जी ने डिक्टेशन देना शुरू कर दिया था. और इस प्रकार अनेक ग्रंथ तेजी के साथ प्रकाशित होते गए. प्रभुपाद जी ने ये जरूर कहा था हम भक्तों को कि प्रचार के लिए उत्साह की आवश्यकता है. एक समय बॉम्बे में मैंने एक बहुत बड़ा बुक स्टोर था फ्लोरा फाउंटेन में, वहां प्रभुपाद जी के ग्रंथों का डिस्प्ले का प्रबंध किया था. शॉप शो विंडो में रैक वगैरह, उनके मालिक हमारे मेंबर थे. पर 1 महीने बाद अनुभव किया कितने ग्रंथ नहीं बिके. तो मैंने जब प्रभुपाद जी को ये कहा कि हालांकि हमने इतना बड़ा डिस्प्ले किया था इतने ग्रंथ नहीं बिके, प्रभुपाद जी ने कहा, माई बुक्स आर सोल्ड बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म ऑफ आवर डिवोटीज. तो हम जब प्रचार के लिए जाते हैं हमें उत्साहित होना चाहिए, और उत्साहित होंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी, सफलता मिलेगी. तो आप सब उत्साह से जोड़िए इस सेवा में. आज नाराहरी सरकार का आविर्भाव, तीरभाव तिथि भी है. नाराहरी सरकार बहुत ऊंचे कोटि के वैष्णव भक्त थे जिन्होंने अनेक बंगला और संस्कृत गाने लिखे, परम भगवान का गुणगान करते हुए, और लोचनदास ठाकुर उनके शिष्य थे, और आज कलिया कृष्णदास का भी तिरुभाव है। कलिया कृष्णदास की नारायण हरि सरकार की। तो कलिया कृष्णदास भी चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, उनकी कृपा से नित्यानंदा और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होती है। तो सब जुड़ गए मैराथन में उत्साह के साथ, और जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सूरत के जो भक्त आए हैं उनका स्पेशल हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा।